पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही जय के साथ बास्केटबॉल खेलती है और चोटिल हो जाती है। जय उसकी मदद करता है। अब आगे कॉलेज में जय रूही को गोद में उठा लेता है क्योंकि उसे चलने में परेशानी हो रही थी। रूही डरती है कि अगर किसी ने उसे देखा तो क्या होगा। जय उसे चेयर पर बैठाता है और उसकी चोट पर मरहम लगाता है। रूही जय को धन्यवाद देती है और माफ़ी मांगती है। जय उसे माफ़ कर देता है। रूही उसे एक गिफ्ट देती है। रूही को परी का फ़ोन आता है और वो चली जाती है। दूसरी तरफ देवांश दिशा से कहता है कि वे उसकी रिंग नहीं निकालेगा और वे उसकी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। चैप्टर 166। अब आगे देवांश के ऑफिस में इतना बोल वे दिशा के चेहरे को देखता है जिसके आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर बह रही थी। जिसे देख देवांश उन आंसुओं को पहुंचते हुए दिशा को बेहद प्यार से समझाते हुए बोला, गुड गर्ल, देखो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। गुड गर्ल, देखो मुझमें क्या खराबी है मुझमें जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। बोलो, अगर प्यार नहीं भी कर सकती गुड गर्ल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। बस तुम एक बार शादी के लिए मान जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। इतना बोल वे दिशा को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगता है कि अब शायद उसकी गुड गर्ल उसकी फीलिंग को समझेगी। वहीं दिशा देवांश की बात सुनकर बोली, सर आपको मैं कैसे समझाऊं कि मैं आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए। जब आप उस लड़की के साथ समय बिताएंगे तो आपको उस लड़की से भी प्यार हो जाएगा। प्लीज़ सर मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इतना बोल वे बेड पर से उठ जाने लगती है। जिसे देख देवांश दिशा को वापस अपने करीब खींचते हुए बोला, गुड गर्ल, तुम्हें लगता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम यहाँ से कहीं जा सकती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिना मेरे परमिशन से यहाँ से जा सकती हो तो ठीक है गुड गर्ल, जाकर दिखाओ। इतना बोल वे दिशा को छोड़ देता है। जिसे देख दिशा बिना एक पल गवाए दरवाजे के पास जा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, मगर दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक था। जिसे देख दिशा समझ जाती है कि देवांश ने अभी अभी वे बात क्यों कही थी। जिसे समझ दिशा अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए अपनी आंखें कसकर बंद करती है, फिर अपनी आंखें खोल दरवाजे के कुछ कदम पीछे ले देवांश की तरफ देखते हुए कहती हैं, ठीक है सर, मैं इस ऑफिस में काम करूंगी, अब प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलिए। दिशा की बात सुनकर देवांश खुश हो जाता है और दिशा को गले लगाते हुए कहता है, गुड गर्ल, मुझे मालूम था कि तुम मुझे निराश कर ही नहीं सकती। इतना बोल वे एक बटन प्रेस करता है जिसके दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही दिशा देवांश को खुद से दूर करते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती हैं। जिसे देख देवांश भी दिशा के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। देवांश के कैबिन में आ दिशा देवांश के कैबिन से निकल जाने लगती हैं। जिसे देख देवांश दिशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, गुड गर्ल, तुमने अभी अभी कहा कि तुम मेरे साथ काम करोगी, तो फिर कहाँ जा रही हो? देवांश की बात सुनकर दिशा देवांश से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, सर मैं कल से टाइम पर ऑफिस आ जाऊंगी, अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज़। दिशा की बात सुनकर देवांश बोला, ठीक है गुड गर्ल, पर कल टाइम से ऑफिस आ जाना। दिशा की बात सुनकर दिशा कुछ भी नहीं कहती और वहां से निकल जाती है। दिशा के जाने के बाद देवांश भी दिशा को थोड़ा टाइम देने का सोच अपने काम में लग जाती है, क्योंकि उसका बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। रात का वक्त, सब डिनर कर अपने अपने कमरे में चले गए थे सिवाय रुद्र के, क्योंकि वे अभी घर ही नहीं आया था। जिसे देख रूही डिनर करने के बाद नीचे ही रुक जाती है ताकि वे सुमन की थोड़ी हेल्प कर सके। किचन में सुमन बर्तनों को एक कपड़े से पोंछ रही थी, वहीं रूही उन बर्तनों को अपनी जगह रख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वे सुमन को देखते हुए बोली, आंटी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? रूही की बात सुनकर सुमन मुस्कुराते हुए रूही के देखते हुए बोली, हाँ रूही बेटा, तुम्हारा जो मन करे वे पूछो। सुमन की बात सुनकर रूही थोड़ा झिझकते हुए बोली, आंटी वे आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? रूही की बात पहले तो सुमन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि रूही रुद्र के बारे में बात कर रही है, तो उसके हाथ जो बर्तन पहुंच रहे थे वे रुक जाते हैं और वे रूही को देखते हुए बोली, रूही बेटा जाने दे इन बातों को, तू इन सब बातों में क्यों पड़ रही है? रूही की बात सुनकर सुमन उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ आंटी बताइए ना, मुझे जाननी है। रूही की बात सुनकर सुमन उन बर्तनों को साइड में रखती हैं और रूही को देख हाँ में सर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, अगर तुझे जानना है तो मैं तुझे बता देती हूँ। इतना बोल वे रूही को ले किचन के बाहर जाती है। फिर हॉल में आ रूही को सोफे पर बैठा खुद भी उसके बगल में बैठते हुए बोली, रुद्र मुझसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत मेरी वजह से हुई। रूही की बात सुनकर रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वे सुमन को देखते हुए बोली, इसका मतलब आप उनकी सगी माँ नहीं हैं। रूही की बात सुनकर सुमन अपना सर ना में हिला देती है और रूही को देख दोबारा बोली, नहीं मैं उसकी माँ नहीं बल्कि मासी हूँ, रुद्र की माँ मोनी दीदी की सगी छोटी बहन। इतना बोल वे कुछ देर रुकती है, फिर रूही को देख दोबारा बोली,
जब रुद्र लगभग 4 साल का था और परी लगभग 1 साल की थी तो मोनी दीदी की मौत हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद धीरज ने ये सोचकर मुझसे शादी कर ली कि रुद्र और परी को एक माँ की ज़रूरत है। और मुझसे शादी करने के बाद रुद्र और परी की लाइफ में माँ की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन इतना बोलते बोलते वे रुक जाती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं।